الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ مریم کی یہ آخری آیات ہیں جن کی ابھی تلاوت کی گئی. ان سے پچھلی چند آیات کا ترجمہ پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اولاد قرار دیتے ہیں, تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ دے کر کے پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم لوگ بے شک ایک بہت بھاری چیز میں آپ سے ہو, یعنی تم نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے رحمان کے بارے میں. تکاد السماوات وتتفطرن منه, یعنی یہ ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے ریزہ ریزہ ہو کر, پارا پارا ہو کر. حدا کا ترجمہ پارا پارا, ریزہ ریزہ, ڈھہ جائیں, جیسے کوئی چیز بالکل کولیپس ہو جاتی ہے. اتنی بڑی بات, یعنی اس کی انٹینسٹی کو اللہ تعالیٰ نے نا اس طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے کہ جیسے قیامت آ گئی. ہم کہتے ہیں نا جی قیامت آ گئی, بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا کسی کی زندگی کے اندر, کوئی بہت قریبی عزیز جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی زندگی میں قیامت آ گئی. ہے نا, تو قیامت آ گئی کا لفظ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قیامت ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس کے اندر ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر کے ختم ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی بالکل. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی لفظ قیامت استعمال کرنے کی بجائے یہاں پر قیامت کا منظر پیش کر دیا ہے کہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر کے ختم ہو جائے. اتنی بڑی بات کری. آنے والی ہے ویسے کرسمس, اب ابھی ہم نومبر میں ہیں نا, تو دسمبر میں تو پھر کرسمس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جب 25 کی تاریخ آتی ہے تو پھر بہت سارے مسلمانوں کو بھی کھجلی ہونے شروع ہو جاتی ہے, ہے نا, پیر میں کھجلی, ہاتھ میں کھجلی, بلکہ دل میں کھجلی کہ جی یہ جو عیسائی ہیں سویٹ سویٹ کرسچنز رائٹ, تو ان کو ہم بھی جا کر کے میری کرسمس کرسمس کہہ کر کے آئے, میری کرسمس کہتے ہیں نا, بہت سارے کہتے بھی ہیں, میسیجز بھیجتے ہیں, حتیٰ کہ پتہ نہیں اب تو کارڈ وارڈ بھی لوگ دیا کرتے ہیں رائٹ. تو اتنے اچھے لگتے ہیں یہ, تو ہمیں لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں لگتے. تو جن کو جو اچھا لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول ہمیں بتا دیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کری, یعنی وہ جس طرح ایک دوسرے کو میری کرسمس کہتے ہیں تو انہوں نے بھی انہی کی طرح میری کرسمس کہنا شروع کر دیا, تو فہو منہم, تو ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا, یہ انہی میں سے ہیں. ٹھیک ہے, انہی میں سے ہیں کا کیا مطلب؟ زندگی تو گزار رہے ہیں مسلمانوں کی شکل و صورت تھوڑی بہت رکھی ہوئی ہے, تھوڑی بہت. ویسے تو علامہ اقبال نے 100-150 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں نہ میں یہود, یا تمدن میں ہنود ہندوؤں جیسے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، تم کو دیکھ کے کیا ہے وہ شرمائے یہود. دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا اس وقت، تو تمہاری تو وہ حالت ہوئی بھی ہے کہ تمہیں یہودی دیکھ کر کے شرما جائیں کہ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں، کس قسم کے اللہ کے وحدانیت کے اوپر یقین رکھنے والے مسلمان ہیں. تو اور دوسری جو حدیث مبارکہ ہے کہ من احبا وہو منہم، کہ جس نے جس سے محبت کری وہ اسی میں سے ہے، وہ اسی کے ساتھ ہوگا. کیا ہے وہ حدیث، یاد ہے اگر کسی کو تو بتا دیں. اگر ہمارے گھروں میں اس طرح کریں وش، اس طرح کریں وش کرنا تو ہم کیا کریں؟ تو آپ بھی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ، آپ بھی خربوزہ بن جائیں، ہے نا؟ آپ انسان تو نہیں ہیں نا، آپ تو خربوزہ ہیں نا، تو خربوزہ کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ دے تو آپ بھی خربوزہ کی طرح رنگ پکڑنا شروع کر دیں. اللہ نے اگر آپ کو خربوزہ بنایا ہے تو آپ بھی خربوزوں کی طرح سے زندگی گزاریں. لیکن اگر اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے تو آپ انسان کی طرح زندگی گزاریں، ٹھیک ہے نا، جو کہ اپنے رب رحمان کا شکر گزار ہوتا ہے. کیا خیال ہے پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ Going with the flow. المرء مع من احب، جزاک اللہ خیر، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کری، ٹھیک ہے. تو ہم اس طرح کی حرکت کریں تو ہمیں موت سے اور آخرت سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کو اس سے زیادہ اور کیا کیا چاہیے ہمیں، کہ تقاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى. اور کچھ رہ گیا ہمارے لیے بات سمجھنے کے؟ اور کچھ چاہیے؟ اور بھی مزید کچھ سننے کو چاہیے؟ تو بھائی جس کو ان باتوں کی فکر پڑ جائے نا تو پھر تو وہ ساری دنیا سے ٹکر لے جاتا ہے، ساری دنیا سے ٹکر لے. گھر والے جو ہے وہ میری کرسمس کہنا شروع ہو جائے تو کیا کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو روکیں، ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھوں سے روکو، یعنی فزیکل ہو جاؤ ان کے ساتھ، بھوسا مارو ان کو ایک، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نہیں کر سکتے اپنے شوہر کو، اپنے ایون بچوں کو بھوسا تو نہیں مار سکتی نا، تو نبی علیہ السلام نے دوسرا درجہ فرمایا کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، یعنی سمجھاؤ، زبان سے منع کرو، ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں یہ بھی نہیں کر سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا درجہ بتایا کہ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا سمجھو، ہے نا. تو ہمارے لیے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت آسانی کر دی کہ دل سے برا سمجھ لو، زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس سے نیچے ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. کہ برائی کو دل سے برا سمجھ رہے ہو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. مطلب اگر تم برائی کو دل سے برا نہیں سمجھ رہے ہو، نہیں سمجھ رہے ہو اس کو برا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان نہیں ہے تمہارے اندر. تو برائی کو برا سمجھنا یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا دل کے اندر، رائٹ. اس سے ہمیں کس نے روکا ہے؟ دل چیر کر کے تو ہم کوئی نہیں دیکھ سکتا نا، ہمارا چاہے ہمارے کتنا ہی لباس ہی کیوں نہ ہو ہمارا، رائٹ. مرد اور عورت، شوہر اور بیوی آپس میں لباس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے. لیکن لباس بھی دل کھول کر کے تو نہیں دیکھ سکتا نا، دل کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو دل کے اندر نفرت کریں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اور شرک کی مغفرت نہیں ہے، شرک کی مغفرت نہیں ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں ہے یہ رحمان کے لیے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، اپنی اولاد بنا لے. ان كل من في السماوات والارض، نہیں ہے جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے اندر ہے سب کچھ، الا سوائے اس کے، آت الرحمن عبدا، وہ رحمان کے پاس بندہ بن کر کے آتا ہے. صرف پنجابی میں کہتے ہیں بندے دا پتر بن کے آتا ہے، यानी बंदगी, ठीक है, चाहे वो माने चाहे वो ना माने, है तो बंदा ही ना। इंसान और जिन्नों में ऐसे बहुत सारे हैं जो कि मानते नहीं है कि वो बंदे हैं, ठीक है, लेकिन उनके ना मानने से वो कोई माबूद को थोड़ी बन जाते हैं, रहते तो वो बंदे ही है ना। और बाकी सारी मखलूक तो मानती भी है कि वो बंदा है अल्लाह ताला की, यानी अल्लाह ताला की इबादत में लगी रहती है। लकद अहसाहुम वअद्दहुम अद्दा, लकद का तर्जुमा तहकीक से करते हैं, यानी बेशक, वेरीली, इंडीड। अहसाहुम, उनका यानी उसने शुमार कर रखा है उनको। अहसा युहसी एहसान का मतलब होता है शुमार करना, गिनती करना, काउंट करना। तो उसने यानी रहमान ने शुमार कर रखा है उनको, हुम, हुम मींस उनको, वअद्दहुम अद्दा, और वाव का तर्जुमा और अद्दा, अद्दा का मतलब तादाद करी हुई है उनकी, यानी वही अगेन दोबारा काउंटिंग। तो अद्दहुम अद्दन, और गिन रखा है उनको, गिन करके रखना, ठीक है, यानी गिन करके रखना जो है वो आखिर में ये एम्फेसिस के लिए अरबी जुबान के अंदर उसी वर्ब का मस्तर, तो उसका आईएनजी वर्ब, आईएनजी नाउन जो होता है वो आखिर में रिपीट कर देते हैं ताकि और ज्यादा बात के अंदर ताकीद पैदा हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हर चीज को शुमार करके रखा हुआ है और गिन करके रखा हुआ है। कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामती फ़र्दा, और कुल्लुहुम, और वो सब के सब, आतीही, आते आएंगे उसके पास यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, फ़र्दा, अकेले अकेले, यानी मियां बीवी को एक साथ नहीं लाया जाएगा, ठीक है, मियाँ का अलग हिसाब होगा, बीवी का अलग हिसाब होगा, औलाद का अलग हिसाब होगा, वालिदैन का अलग हिसाब होगा, हर कोई अलग अलग, अकेले अकेले। तो वो अकेले जब आया हुआ होगा या आई हुई होगी, तो उस वक्त जो है अगर उसकी आदत होगी जिंदगी के अंदर, दुनिया की जिंदगी में, दूसरों को इल्जाम देने की, है ना, जिस तरह हमारी आदत बनी हुई है कि हम कभी भी अपने ऊपर तो लेते ही नहीं, हम तो कहते हैं उसकी वजह से, है ना, वो है सारा के सारा मसले की जड़, ठीक है। तो जिसकी आदत दुनिया के अंदर बनी हुई होगी वो वहां पर भी यही करेगा, है कि वो किसी और को इल्जाम देगा, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, लेकिन ये सारा काम वहां पर गायबाना कर रहा होगा। ये नहीं कि बाकी सारे लोग बराबर में खड़े होंगे और अब ये उंगलियां उठा उठा करके उसकी तरफ बोल रहा होगा, बल्कि ये अकेला ही होगा, हम, मैं, आप सब के सब अकेले रहमान के पास, फर्दन, ठीक है, फर्दन फर्दन। फिर जब हिसाब किताब होगा, तो फिर जब तय हो जाएगा कि अच्छा उसका इसके ऊपर हक है, इसका उसके ऊपर हक है, तो फिर उसके बाद ये वो एक अलग ड्रामा हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन पहले जो है वो फर्दन फर्दन अल्लाह के सामने हाजिरी हो रही होगी। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लेकर के आए और जिन्होंने नेक आमाल किए, सालिहात का लफ्ज नेकियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिन्होंने नेक आमाल किए, सयजअलु अनकरीब, सीन का मतलब अनकरीब, यजअलु, उनको देगा, यानी अल्लाह ताला की बात चल रही है ना कि अल्लाह ताला देगा उनको, अल्लाह ताला बना देगा, लहुमुर रहमानु, अर रहमान यहां पर यजअलू का फाइल है, डूअर है, ठीक है, तो रहमान कर देगा, रहमान बना देगा, रहमान दे देगा, जैसे भी आप तर्जुमा कर सकते हैं इसका, लहुम उनके लिए, वुद्दन, वुद्दन ये वद्दा या वुद्दू से निकला, जैसे अल्लाह ताला की सिफत में से एक नाम है, सिफाती नाम वदूद, अल वदूद, मोहब्बत वाला, अल्लाह ताला मोहब्बत वाला है, तो वुद्दा का मतलब मोहब्बत। तो बेशक जो लोग ईमान लेकर के आए और जिन्होंने नेक अमाल किए, अन करीब अल्लाह ताला उनके लिए मोहब्बत बना देगा, मोहब्बत डाल देगा, मोहब्बत पैदा कर देगा, ठीक है, क्या मतलब मोहब्बत पैदा कर देगा? मोहब्बत किसी दरख्त का नाम है कि उस दरख्त को उगा देगा, मोहब्बत किसी चीज का नाम है कि वो चीज अल्लाह ताला बना देगा? नहीं, बल्कि दिलों में मोहब्बत डाल देगा, दूसरों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल देगा, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है? आमनु व अमलुस सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए दूसरों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके लिए दूसरों के दिलों में मोहब्बत नहीं डालेगा, है ना। इसका रिवर्स भी तो बनता है ना, कन्वर्स भी तो इसके एक ट्रांसलेशन है ना, इसका एक कॉन्सेप्ट है ना, कि जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मोहब्बत नहीं डालेगा। तो फिर ये सारे काफिर एक दूसरे से जो करते फिरते हैं, ये क्या चीज करते हैं फिर? इनके लिए मोहब्बत अल्लाह ताला ने नहीं डाली तो ये क्या करते हैं? तो इनकी जो मोहब्बत होती है, इसके दो एक्सप्लेनेशन है। एक तो ये कि मोहब्बत होती ही नहीं है, बल्कि गर्ज होती है खाली, नफ्स परस्ती होती है। मोहब्बत इनको सिर्फ अपने आप से होती है और किसी से मोहब्बत नहीं, ठीक है ना, किसी से मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ अपने आप से, अपने नफ्स से मोहब्बत होती है और किसी से मोहब्बत नहीं होती, ठीक है। ये तो है एक एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसके आगे जाकर के दूसरी एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि नहीं जी, करते तो हैं बहुत सारे, है ना, जैसे आपस में मोहब्बत, यानी दोस्ताना मोहब्बत, राइट, वो नफसानी शहवानी के तो छोड़ ही देना, दोस्ती दोस्तियां होती हैं काफिरों के दरमियान आपस में, और माँ अपने बच्चों से मोहब्बत करती है चाहे वो काफिर क्यों ना हो, ठीक है। तो ये जो मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत की हकीकत नहीं होती इसके अंदर, ठीक है ना, ये एक जाहिरी और थोड़े दिन की मोहब्बत होती है। और ये मोहब्बत जो है ना, फिर ये दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो मोहब्बत है ना, ये चूंकि ये मोहब्बत अल्लाह की खातिर नहीं होती, अल्लाह की निस्बत से नहीं होती, आखिरत की निस्बत से ये मोहब्बत नहीं होती, तो इस वजह से अगरचे कि ये शुरू में होती है, शुरू में होती है मोहब्बत, लेकिन बाद में जा करके ये नफरत में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। दुनिया ही की जिंदगी में बूढ़े होते हैं, फिर औलाद जो उनके साथ सलूक करती है तो वो नफरत में मुब्तला हो जाती है वो मोहब्बत, ठीक है। या ये कि अगर दुनिया की जिंदगी में ना भी हुई नफरत में कन्वर्ट, तो आखिरत में तो ये नफरत में कन्वर्ट हो ही जाएगी, आखिरत में तो ये नफरत में कन्वर्ट हो ही जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से अगर मान भी लेते हैं कि वाकई मोहब्बत है काफरों को आपस में, अगर मान लेते हैं तो ये मोहब्बत भी जो है, ये भी बाद में जाकर के नफरत में कन्वर्ट हो जाएगी। वरना पहली एक्सप्लेनेशन क्या थी कि मोहब्बत है ही नहीं, नफ्स परस्ती है सारे के सारे, ठीक है। ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मोहब्बत तो अल्लाह ताला दिल में डालते हैं, और ये कब डालते हैं, किसके दिल में डालते हैं? इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, ये होते हैं मोहब्बत करने वाले, ठीक है। वफा होती है ना, वफा, वफा, ये वफा एक अजीब चीज होती है, ये नाम वाली वफा नहीं, ख्वातीन का नाम भी वफा होता है, नहीं, बल्कि वफादारी, जो मोहब्बत के अंदर वफादारी होती है ना, ये बड़ी स्पेशल चीज होती है, ये हर कोई नहीं वफा कर सकता, हर कोई वफा नहीं कर सकता, ये मोहब्बत की वजह से वफा होती है और ये रहती है। तो मोहब्बत को जो है ना, हम वफा से समझने की कोशिश करें, ये ऊपर से कुछ स्वीट वर्ड्स कह देना या बर्थडे कार्ड दे देना या जो है वो फलानी चीज विश कर देना, ठीक है, या इस तरह की कुछ और जो है वो गिफ्ट विफ्ट ला करके दे देना खाली, है ना। तो हम मोहब्बत को इन चीजों से मेजर करते हैं कि हाँ जी, मुझे किसने याद रखा और मुझे किसने गिफ्ट ला करके दिया और उसने उसको विश किया और उसने उसको कार्ड दे दिया, है ना। तो ये दिस इज इक्विवेलेंट टू मोहब्बत नहीं, मोहब्बत को जो है ना, ये इन चीजों से हम मेजर ही गलत कर रहे हो, हमें इन चीजों से नहीं इसको गेज करना है, इसको इसको नापना है कि ये मोहब्बत है कि नहीं है, विश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं, बल्कि मोहब्बत की मेजरमेंट जो होती है ना, ये वफा होती है, वफा, वफादारी भी और वफा भी, यानी जब अच्छे बुरे हालात आ जाएं किसी के ऊपर, किसी के ऊपर हत्ता के कोई गुनाहों में भी मुब्तला हो जाए, ये नहीं कि मतलब खाली दुनियावी तौर पर बुरे हालात आ गए, पैसे वैसे खत्म हो गए, घर वर टूट गया और खानदान जो है वो बिखर गया, और फिर उसके बाद आप उसके साथ वफा कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ वो तो वफा है ही, और हम समझते भी हैं कि हाँ जी इसको वफा कहते हैं कि किसी के ऊपर बुरे हालात आ गए फिर भी आप उसके साथ वफा कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, रूहानी तौर पर भी अगर किसी के ऊपर बुरे हालात आ जाएं तो वफा इसको भी कहते हैं कि उसकी खैर ख्वाही में उसके लिए फिक्र करते रहना, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना और उसकी इस्लाह की फिक्र करते रहना, ये भी वफादारी के अंदर, ये भी वफादारी के अंदर शामिल है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये होती है मोहब्बत, ठीक है, जिसके अंदर वफा हो। फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीना व तुंज़िरा बिही कौमन लुद्दा। फइन्नमा, सवाय इसके नहीं के यस्सरनाहु, हम ने आसान कर दिया, बिलिसानिका आपकी जुबान पर, आपकी जुबान पर, लिसान जुबान को कहते हैं, और का यानी नबी अलैहि सलाम से मुखातब होकर के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो हमने आसान कर दिया आपकी जुबान पर इसको, किसको, कुरान को। हु जो प्रोनाउन है ये कुरान की तरफ पॉइंट कर रहा है, हमने इस कुरान को आपकी जुबान पर आसान कर दिया, ठीक है। कैसी जुबान चलती है कुरान के अंदर, माशाल्लाह, है ना। जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता वो भी फर 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 फर, माशाल्लाह, अरबी जुबान है ना। हालांकि अरबी जो है वो उसको अलिफ बे नहीं आती अरबी की, लेकिन कुरान याद हो गया और कुरान जो है वो माशाल्लाह, कोई खवातीन भी जिन्होंने हिफ्ज़ उसको ही नहीं किया, माशाल्लाह सूरह मुल्क पढ़ रही हैं जी, और अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ रही हैं, और लंबी लंबी सूरतें जो है वो रट करके फिर माशाल्लाह रोजाना जो है वो वजीफे के तौर पर पढ़ रही होती हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम की जुबान पर और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर इस कुरान को आसान कर दिया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक के ऊपर आसान करने की रीजन भी बताई, ली ताकि तुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीन, आप बशारत दें मुत्तकीन को, यानी खुशखबरी, बशारत, अच्छी खबर, व तुंजरा, और आप डराएं भी इस कुरान के जरिए से, यानी इस कुरान के अंदर जो हमने वईदे रखी हैं गुनाह के ऊपर, शिर्क के ऊपर, कुफर के ऊपर, उनसे आप डराएं कौमन लुद्दा, इन झगड़ारू लोगों को, ठीक है। यानी कौम का मतलब ये लोग जो हैं जिनको आप कुरान पढ़ के सुनाते हैं, लुद्दन झगड़ालू, यानी ये आपसे झगड़ते हैं, आपसे आर्गुमेंटेशन करते हैं और हुज्जतें बनाते हैं। मुत्तकीन को आप बशारत दें और जो मुनकरीन हैं उनको डराएं। वकम अहलकना तबलहु मिन कर्न, और तहकीक के अहलकना, हमने हलाक कर दिया, तबलहु इनसे पहले, मिन कर्न, बहुत सी जमातें, मिन का तर्जुमा यहाँ पर बयानिया यानी बहुत सारे से कनेक्ट कर सकते हैं, और कर्न कर्न जो है वो यहाँ पर बस्तियां, जैसे करिया करिया भी हम कहते हैं, तो कर्न का मतलब जनरेशंस से वैसे तो ट्रांसलेट किया जाता है इसको, बहुत सारी जमातों को हलाक कर दिया हमने इनसे पहले, यानी मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन से पहले। हल तो हिस्सु मिनहुम, क्या तू आहट पाता है, हस्सा युहिस्सु, यानी जिसको कहते हैं ना हिस, तो हिस का मतलब क्या कि आपको किसी चीज की पता लग जाता है ना, जब आप कुछ टच करते हैं तो आपको उस चीज का अंदाजा हो जाता है कि वो कैसी चीज है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस की फॉर्म की कोई चीज है, राइट। या आप उसको सूंघते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि उसकी उसकी स्मेल कैसी है, या देखते हैं तो अंदाजा हो जाता है उसकी शक्ल कैसी है, या सुनते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि उसकी आवाज कैसी है, ठीक है। तो ये सब हिस्से हैं हमारी, हवास खमसा भी इनको कहते हैं, द फाइव सेंसेस, ठीक है। तो हल तो हिस्सु मिनहुम, क्या इनमें से आप आहट पाते हैं, हिस पाते हैं, मिन अहदिन, किसी एक की, औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा, या तू सुनता है तस्माउ, औ का मतलब या, तस्माउ आप सुनते हैं, लहुम इन इन के लिए, रिक्जन भिनक, यानी बहुत ही हल्की सी आवाज, आपको कोई आती है इनकी आवाज, यानी वो जो पिछली जो कौमें हलाक कर दी हमने, तो उनका तो अब किसी को कुछ पता ही नहीं, उनकी तो कोई आवाज भी नहीं आती, उनका कुछ अता पता ही कोई नहीं, सवाए जो अल्लाह ताला ने उनके बारे में बताया भी इस तरीके से उनको हलाक किया गया, वरना उनकी सारी कम्युनिकेशन खत्म हो चुकी है। बहुत से लोग उलमा सुलहा नेक लोगों से मोहब्बत नहीं करते बल्कि दुश्मनी का मामला करते हैं, उसको कैसे समझें, अभी आगे आ रही है इसकी तफसीर भी, तो वहां पे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। मिन का तर्जुमा क्या होगा, वजाहत कर दें, यानी यहां पर मिन, देखें बयानिया का मतलब होता है कि आप किसी चीज को बयान कर रहे हैं ना, किसी चीज के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो यानी बहुत सी जमातें जो आप कह रहे हैं ना उर्दू जबान में, अब इसका लफ्जी तर्जुमा तो से तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज मिन बादिया का तर्जुमा से करते हैं, फ्रॉम जैसे अंग्रेजी में होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सी जमातें, बहुत से जनरेशन हमने हलाक कर दी इनसे पहले, तो उसका फिर लफ्जी तर्जुमा फिर बहुत से ही बनेगा, बस यानी आप किसी चीज को बयान कर रहे हैं तो लफ्जी तर्जुमा इसी तरीके से इसको करना पड़ेगा। और कुछ एक्सप्लेनेशन इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही। अच्छा, खुलासे तफसीर भी शुरू कर लेते हैं कि और ये काफिर लोग कहते हैं वकालू इत्तखज़ अर्रहमान वलदा, कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला ने औलाद भी इख्तियार कर रखी है, यानी बनाई हुई है, पकड़ी हुई है कोई औलाद के तौर पर, किसी को पकड़ा हुआ अल्लाह ताला ने, चुनाचे नसारा कसरत से और यहूद किल्लत से, यानी नसारा में तो सारे के सारे ही अब ऐसे रह गए ना कि जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की औलाद मानते हैं, ठीक है ना, तो अब यानी ईसाई होने की पहचान यही है कि नऊज़ु बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, ठीक है, तो कसरत से नसारा ने ये काम किया ईसाइयों ने, और यहूद ने किल्लत के साथ, यानी यहूद में एक फिरका है कि जो कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की औलाद कहता है, ठीक है, सारे यहूदी नहीं कहते, तो इस तरह इस वजह से यहूद किल्लत से कहा, और मुशरिकीन अरब इस अकीदा फासिदा में मुब्तला थे। मुशरिकीन अरब किसको अल्लाह की औलाद कहते थे, फरिश्तों को, ठीक है, कि फरिश्ते जो है ना ये अल्लाह ताला की बेटियां हैं, अब उसके ऊपर ना फिर आपस में पूछते भी थे कि अच्छा ये बेटियां हैं तो फिर अल्लाह की बीवी कौन है, नऊज़ु बिल्लाह, तो जवाब में कहते थे कि अल्लाह ताला ने किसी जिन्निया से शादी करी, जिन फीमेल जिन उसे शादी करी हुई है, और औलाद में जो है ये फरिश्ते, यानी ऐसी ऐसी ऊट पटांग और भयानक किस्म की और बेहुदा किस्म की बातें जो है वो अल्लाह ताला के बारे में करते थे मुशरिकीन मक्का, ठीक है, और साथ साथ अल्लाह ताला को खालिक मानते भी थे, राज़िक मानते भी थे, कादिर मानते भी थे, सब कुछ, और साथ साथ ये वाली हरकतें भी करते थे। तो औलाद का मसला सिर्फ ईसाइयों के साथ नहीं था बल्कि दूसरों के साथ भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने जो ये बात कही तो ऐसी सख्त हरकत की है कि इसके सबब कुछ बईद नहीं कि आसमान फट पड़े और जमीन के टुकड़े उड़ जाएं और पहाड़ टूट कर गिर पड़े इस बात से कि ये लोग खुदा ताला की तरफ औलाद की नस्बत करते हैं, हालांकि खुदा ताला की शान नहीं कि वो औलाद इख्तियार करे, बल्कि ये जो आयत है ना, ये जो तीन आयतें हैं, قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا اور تَكَادُ السَّمَاوَاتُ سے لے کر کے اَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، ٹھیک ہے، تو یہ جو چار آیات بنتی ہیں نا، تو ان کو جو ہے نا، اگر آپ کے دوست احباب میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ میری کرسمس اور کرسمس کی لائٹنگ بھی لگا لیتے ہیں، اور کوئی تو یعنی یہ سب ہوتا ہے نا، کرسمس ٹری بھی گھر میں کے اندر آ کر کے کرسمس ٹری کو بھی لا کر کے رکھ لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ
अच्छा आज जो है ना ये एक नई शक्ल है इस वक्त, ये आज से 30 साल पहले 20 25 30 साल पहले इस तरह से कम होता था कि दीनदार लोग ऐसी हरकत करते, ठीक है ना। पहले जो जो करते थे लोग तो उनके घरों में बिल्कुल दीन, बिल्कुल पर्दा भी कुछ नहीं, नमाजें भी नहीं होती थी, तो वो लोग इस तरह के काम करते थे, है ना, क्रिसमस ट्री लेकर के आ रहे हैं और ये सब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। आज तो यानी ये भी करते हैं और 5 वक्त मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ते हैं, पर्दा भी किसी ना किसी दर्जे में पर्दा भी कर रही होती है और ये भी कर रही होती है साथ साथ, ठीक है ना। तो आज तो जो 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 इस दौर का जो मसला है ना, ये मसला जो है वो बेदीनी तो है ही, यानी ये नहीं कि बेदीनी वाला मसला खत्म हो गया, वो तो अपनी जगह पर है आज भी, लेकिन एक नई शक्ल जो आई है ना वो ये है कि दीन की दीन का हुलिया बिगाड़ देना, ये नई शक्ल है इस वक्त गुमराही की, ठीक है। कि जी बहुत दीनदार, बहुत कुरान पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वाले और पर्दा भी करने वाले और बहुत दीन का दीन दीन को कायम करने वाली मेहनत करने वाले भी बहुत सारे इस तरह के तंजीमों वाले और तहरीकों वाले और, है ना, वहां पर ये इस किस्म की हरकतें होती, ठीक है, और उनको अंदाजा ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे, ठीक है। वो किसी की देखा देखी शुरू कर दी और या दिल फटना शुरू हो गया, हाँ जी सबको मुसलमान बनाते हैं, चलो जी सारी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे, है ना। तो अब सारी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए अब जो है वो ईसाइयों को जरा खुश करें ना, ईसाइयों को करीब होने के लिए, तो ईसाइयों को करीब होने के चक्कर में अपना ही दीन खत्म, है ना, अकायद ही खत्म। किसी की मदद करने के लिए जा रहे हैं तो जी मदद करने के अंदर जो है वो ना अकीदा ही खराब कर दिया, दीन ही बिगाड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने तौर पर बहुत दीन दीन की खिदमत कर रहे होते हैं और बहुत दीन की यानी नुसरत कर रहे होते हैं, यानी क्या क्या, लेकिन असल में दीन जो होते हैं ना वो बिल्कुल ही जो होते हैं खत्म हो चुका होता है और उनको पता भी नहीं होता इस बात का, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं होता कि वो अपने अकीदे के साथ क्या कर चुके हैं, तो उनको अगर आप ये कुरान की आयात याद दिला दें तो हो सकता है वो संभल जाए, हो सकता है वो बात मान जाए, ठीक है। मौलवी साहब की कोई बात उनको बताएंगे तो वो तो नहीं मानेंगे फिर, क्योंकि वो तो उन्होंने जवाब ही देना है कि मौलवी सारा तो मसला ही मौलवियों का पैदा किया हुआ है, वही यही तो वजह है कि दुनिया के अंदर इस्लाम नहीं फैलता, मौलवियों ने तो फैलाया नहीं, अब हम फैलाएंगे इस्लाम, ठीक है ना। तो वो इस्लाम क्या फैलाएंगे, वो खुद ही कुफर के अंदर चले जाते हैं इस चक्कर के अंदर। तो उनको अगर ये आयात आप कॉपी पेस्ट कर लें कहीं से और अगर इस किस्म की चीज़ देखें तो उनको भेज दें, तो बाकी हिदायत अल्लाह के हाथ में, हमने तो कोई देनी किसी को हिदायत। अच्छा, तो ऐसी सख्त हरकत की है कि इसके सबब कुछ बईद नहीं कि आसमान फट पड़े और जमीन के टुकड़े उड़ जाएं और पहाड़ टूट कर गिर पड़े इस बात से कि ये लोग खुदा ताला की तरफ औलाद की निस्बत करते हैं, हालांकि खुदा ताला की शान नहीं कि वो औलाद इख्तियार करे, क्योंकि जितने कुछ भी आसमानों और जमीनों में हैं सब खुदा ताला के रूबरू गुलाम होकर हाजिर होते हैं। कहते ना जी व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट, मसला वो करते हैं तो उसमें बुराई क्या है, हमें क्या पता जी हमने जन्नत में जाना है, हम कौन से अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ये क्या बात हुई भाई हम कौन से अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो कुफर कर रहा है, जो शिर्क कर रहा है, तो अब वो अच्छा हो गया। बेशक हम बुरे हैं, बेशक हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत हम झूठ बोलने वाले और बहुत जुल्म करने वाले बेशक हम हैं, ठीक है, लेकिन अगर ईमान सलामत है तो वो ये बात ना बिल्कुल क्लियर। देखें बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है, इसको जरा गौर से समझ लें, सुन लें इस बात, ठीक है। ये बहुत आम एक तसव्वुर है मुसलमानों में कि जी काफिर जो है वो इतने अच्छे हैं और काफिर जो है वो इतना नेक काम करते हैं और मुसलमान इतने बुरे हैं, वो इतने धोखा देते हैं और इतना जो है फ्रॉड करते हैं, वो करते हैं करते हैं, ठीक है, तो वो हमसे ज्यादा अच्छे, ठीक है भाई। अगर किसी को ईमान की अहमियत का पता चल जाएगा। पहली बात तो ईमान की तारीफ क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ मुस्लिम, ईमान की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है, राइट। क्या हमारे गुनाह का मतलब यह है कि हम ईमान से खारिज हो गए, या उनकी नेकियां, वो अगर सच बोल रहे हैं, एक तो पिछली क्लास में बात हो चुकी है कि ये हमारी निगाहों का धोखा होता है, वो कोई सच वच नहीं बोल रहे, ठीक है ना, वो हमें पता नहीं कुछ होता, हमने जा करके देखा नहीं होता, ऊपर ऊपर से देख करके जो है वो फैसले करते रहते हैं कि बड़े अच्छे हैं, बड़े सच बोलने वाले हैं, है ना, हमें पता ही नहीं होता कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना उन्होंने जुल्म किया हुआ है अपने आप के ऊपर और तुम्हारे ऊपर, ये सब कुछ हमें नहीं पता होता, ठीक है। लेकिन अगर हम फिर भी देख रहे हैं कि अच्छा जी वो तो बड़े सच्चे हैं, ठीक है ना भाई, वो सच्चे हैं, लोगों के साथ सच्चे हैं, अपने जॉब के ऊपर सच्चे हैं, अपने बिजनेस के अंदर सच्चे हैं, अपनी डीलिंग्स के अंदर सच्चे हैं, ठीक है, लेकिन क्या उनका इन मामलात में सच्चा हो जाना उनको ईमान वाला बना देता है, वो ईमान वाले बन जाते हैं? नहीं, वो ईमान वाले नहीं बनते, ठीक है। इस आजिज ने तो बाकायदा इस टॉपिक के ऊपर बयान भी किया है कि यानी उसमें बहुत सारी बयान किया है, से मुराद ये कि उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस करी, ठीक है, कि जापान के लिए लोगों का कलेजा फटा चला जा रहा है, जापान अजीमुशान है, जैसे कुरान अजीमुशान होता है ना, उसी तरह कुछ लोगों ने जापान अजीमुशान, और उसके ऊपर जो है वो वीडियोस बना बना करके और व्हाट्सएप मैसेजेस बना बना करके सारी दुनिया में भेजे चले जा रहे हैं, ठीक है ना, कि जापान के अंदर तो जी कोई किसी की पाई भी नहीं चुराता है ना, ऐसा ऐसे ऐसे जो है वो यानी तारीफ के कुलाबे मिलाए हुए हैं जापान के बारे में, ठीक है ना, और ये सब कुछ कहने के बाद कहते हैं जापान वाले तो मुसलमान भी नहीं है, यानी पहले उनकी खूब अच्छाइयां बयान करी और फिर साथ ही कह दिया कि जी वो तो मुसलमान भी नहीं है, तो किस यानी क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, खोते का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, दिमाग में तो खोते का लफ्ज ही आता है इस तरह से, है? और क्या आएगा दिमाग, गधा गधा गधे को तो खोदा कहता है, ठीक है, तो कोई खोता भी इसको सुन करके यही कहेगा ना कि फिर ईमान की जरूरत ही क्या है भाई, मुसलमान बनने की जरूरत ही क्या है ना, कौन न्यूज बता रहा है, ठीक है, कि मुसलमान बनने की जरूरत ही क्या थी, जब तुम जापान, जब सारी भलाइयां तो जापान में बगैर ईमान के मौजूद हैं, तो पाकिस्तान में ईमान का फायदा क्या है ना, तो इससे क्या चीज आ, यानी व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, क्या आप जो है वो प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ईमान की तो अहमियत फिर खत्म ही हो गई ना, फिर ईमान की तो रेलिवेंस ही कोई नहीं रही ना फिर मुसलमान होने की, जापान वाले तो मुसलमान नहीं है, राइट, और साउथ कोरिया में शायद और भी इसी तरीके, और सिंगापुर भी उठा करके कोई भी मुसलमान नहीं है इनमें से, और सारा का सारा निज़ाम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, ठीक है, तो ईमान की ज़रूरत ही फिर क्या है, सही है, तो ये वही लोग करते हैं जिनको कि पता ही नहीं होता कि ईमान की तारीफ क्या है, ईमान है क्या चीज़, वो इस किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर फिर उनको खूब एक जगह भेजते हैं, आगे से वो 10 जगह भेजते हैं, आगे से वो 100 जगह भेजते हैं, पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, ठीक है। तो ईमान की तारीफ सबसे पहले मालूम होना, ईमान है क्या चीज, फिर उसके बाद ईमान की अहमियत, कि आमाल क्या चीज होते हैं और ईमान क्या चीज होती है, आमाल की कितनी अहमियत है और ईमान की कितनी अहमियत है, इन दोनों में फर्क, इन दोनों का फर्क हमें नहीं पता कि ईमान क्या चीज है और आमाल क्या चीज है, हमें इनका फर्क ही नहीं पता, ठीक है, तो इस वजह से ना बड़ी कंफ्यूजन फैली हुई है। इसमें से एक बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि जी कुछ लोग जो अमेरिका यूरोप, वही जापान अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया है, इन सब जगहों पे जो रहते हैं, तो वहां पर ये मसला भी होता है कि जी अपने बच्चों को, यानी जो दीनदार लोग होते हैं अमेरिका वगैरह के अंदर, जो दीनदार लोग होते हैं, तो वो ना फिर अपने बच्चों को बताते हैं कि भाई ये लोग तो काफिर हैं, और ये लोग जो بے حیائی تو بہرحال ہے نا, بے حیائی تو وہاں پہ ختم نہیں ہو گیا نا, جاپان جو ہے وہ پردہ تو نہیں کرتے نا وہ لوگ, ہے نا. تو ایک برائی کو تو ہم نگیٹ کر نہیں سکتے نا, باقی برائیوں کو تو ہم بھول جاتے ہیں, سچ بولتے ہیں اور یہ کرتے, بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ, ٹھیک ہے نا. لیکن بے حیائی, بے لباسی, اس کو تو نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے کپڑے اتارے ہوئے اور ہم بچوں کو ہم کہنا شروع کر دیں کہ نہیں نہیں یہ تو پورے کپڑے پہنے ہوئے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے, یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا. تو اس وجہ سے یہ جو ایک برائی ہے نا, بے شرمی اور بے حیائی والی برائی, تو یہ برائی جو ہوتی ہے پھر وہ ہمیں ایڈمٹ کرنی پڑتی ہے ان کی, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے نا اپنے بچوں کو بتاتے کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہے نا, یہ تو چونکہ کافر ہے نا, تو اس وجہ سے یعنی یہ بے حیائی کرتے ہیں, اس قسم کی نازیبہ حرکتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس طرح کی کچھ اور بھی چیزیں جو کہ ان کی برائی ہمیں نظر آتی ہے, برائی ملتی ہے ہمیں, تو ہم اپنے بچوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہاں یہ برا کرتے ہیں. اچھا, اب ان لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ جو ہے نا پھر آتے ہیں پاکستان یا انڈیا, ٹھیک ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ اچھا سعودی عرب بھی آ جاتے ہیں یا کسی دوسرے مسلم ملک میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہوتے ہیں میجورٹی میں مسلمان, چل انڈیا میں میجورٹی میں نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ایک مسلمانوں کا معاشرہ تو ہوتا ہے نا انڈیا کے اندر, ٹھیک ہے. تو اب جب یہ کسی مسلمان معاشرے میں آ جاتے ہیں, کسی مسلمان ملک میں آ جاتے ہیں نا, تو اب کیا ڈائلاما ان کو فیس ہوتا ہے, کیا ڈائلاما فیس ہوتا ہے کہ یہاں پر تو سارے مسلمان ہیں, تو اب یہ مسلمان ایسے کیوں کر رہے ہیں, بے حیائی والا کام, بے شرمی والا کام. میوزک, رائٹ, جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو امریکہ میں بتاتے ہیں کہ جی میوزک جو ہے وہ بری چیز ہے, یہ نان مسلمز کا کام ہے جی. اب پاکستان میں آ گئے تو پاکستان میں سارے مسلمان میوزک, ہے نا, تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جی وہاں پہ کیا کریں, جی وہاں تو سارے مسلمان ہیں جی, تو پھر وہ وہاں پر پھر بچوں کو کیا بتائیں. بڑا ایک ڈائلاما ہے یہ لوگوں کے لیے, بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے اس چیز کا, ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, آپ کے کبھی ایکسپیرینس میں ایسی باتیں آئی, سنا ہوگا آپ نے, اگر آپ کا خود واسطہ نہیں بھی پڑا تو دوسروں سے سنا ہوگا کہ جی پاکستان میں آ کے ذرا بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے, یہاں تو سارے مسلمان ہیں, وہاں تو کہہ دیتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ کہ جی وہ تو کافر ہیں, یہاں پہ کیا بولیں, یہ ایشو بنتا ہے نا, بہت سارے لوگوں کا ایشو بنتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھ سے بھی اسی طرح سے لوگوں نے بات کری ہے, تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی ہمارے بچے بھی الحمدللہ, مطلب الحمدللہ خیر اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ جی امریکہ جانا الحمدللہ, یہ اس لیے نہیں الحمدللہ کہہ رہا, لیکن ہمیں جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں ساری کی ساری فیملی ہے, ان سے ملنا ملوانا ہوتا ہے اپنے بیگم صاحب کو, ٹھیک ہے, تو وہاں جانا ہوتا ہے ہر سال, ٹھیک ہے, وہ گرین کارڈ وغیرہ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہر سال کا ایک ٹریول کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو بھائی کافروں کے ملک میں پیدا بھی ہوئے, کافروں کے ملک میں جو ہے وہ پلے بڑے بھی, ٹھیک ہے, بچوں نے بھی بہت زیادہ کافروں کے ملک کو دیکھا, کافروں کی چیزوں کو دیکھا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد پاکستان بھی گئے, سعودی عرب میں بھی آئے, اور پاکستان سعودی عرب کے اندر یہ سارے کے سارے مسئلے نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں تو کبھی بھی اس قسم کا ایشو نہیں ہوا کہ جی وہاں تو سارے کافر تھے تو اس وجہ سے بڑا آسان تھا بچوں کو سمجھا دینا, اور یہاں پر جو ہے وہ سارے مسلمان ہیں تو اس وجہ سے بڑا مشکل ہے بچوں کو سمجھانا. الحمدللہ ہمیں تو کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا مسئلہ ہمیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کیا ہے یہ چیز سمجھائی بچوں, ایمان کیا چیز ہوتی ہے, ایمان کی کیا اہمیت ہوتی ہے, یہ چیز بچوں کو سمجھانا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد سمجھانا کہ اعمال کیا چیز ہوتے ہیں اور ان کی اہمیت کتنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. امریکہ یورپ کے اندر کتنے بھی اچھے اعمال ہو جائیں لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالی کے یہاں ان اعمال کی کوئی وقت نہیں ہے, وہ اعمال کوئی حیثیت نہیں رکھتے, ٹھیک ہے نا. بچوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھاتے ہم, کیوں نہیں بتاتے بچوں کو, یہ کوئی اتنا مشکل کانسیپٹ نہیں ہے کہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا, اب بچوں کو بتا سکتے ہیں یہ چیزیں, ہاں ان کے لیول پہ جا کے سمجھائیں لیکن سمجھا سکتے ہیں بچوں کو یہ بات. ایمان اگر ہے تب اعمال کا فائدہ ہے, اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جبکہ پاکستان میں اگر مسلمان ہے لیکن بہت زیادہ گناہ گار ہے, بہت دھوکہ کر رہا ہے, بہت ظلم کر رہا ہے, بہت یہ کر رہا ہے, لیکن اگر اس کا ایمان ہے, अगर वो ईमान वाला है तो ये सारे जो गुनाह कर रहा है, ये सारे के सारे आमाल के गुनाह हैं, ये आमाल के गुनाह हैं, ठीक है। और आमाल के गुनाह जो हैं उसकी वजह से सजा मिल रही है। ये कोई थोड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग गुनाह कर रहे हैं तो ईमान की वजह से अल्लाह ताला ने उनको कोई सजा नहीं दी, राइट, बड़ा उनको इज्जतों के साथ रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, नहीं, सजा पा रहे हैं सारे के सारे, सजाओं का शिकार हो रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, सऊदी अरब के अंदर, है ना। तो बच्चों को इस तरीके से बताएं कि भाई गुनाहों की भी सजा होती है, ठीक है, लेकिन अगर ईमान है तो फिर आखिरत के अंदर अल्लाह ताला इनके साथ दूसरा मामला करेंगे, इनके गुनाहों को माफ कर देंगे और इनको जो है वो इनके ईमान की वजह से कभी ना कभी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, चाहे कुछ भी करते फिरे इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो अगर ईमान को वाजे कर दिया, ईमान की अहमियत समझा दी और अमाल को भी वाजे कर दिया और अमाल की अहमियत जो है वो ईमान के मुकाबले में कम करके समझाई, ठीक है, तो फिर इस किस्म के इश्यूज नहीं होते, ठीक है। तो खुलासा तफसीर के अंदर आगे फरमाते हैं कि सब के सब खुदा तआला की रूबरू गुलाम होकर हाजिर होते और उसने सबको अपनी कुदरत में इहाता कर रखा है और अपने इल्म से सबको शुमार कर रखा है, यानी अहसाहुम का तर्जुमा हजरत ने यहाँ पर इहाता कर रखा है, यानी घेर रखा है हर चीज को, ठीक है, और अपने इल्म से सबको शुमार कर रखा है, अद्दा लहुम अद्दा, शुमार कर रखा है। ये हालत तो उनकी फिलहाल है, यानी इस वक्त कुफार की हालत है कि अल्लाह ताला के इल्म के इहाते में सब कुछ है, इनका कोई भी चीज अल्लाह ताला से छुप करके ये नहीं कर रहे, और कयामत के रोज सब के सब उसके पास तन्हा तन्हा हाजिर होंगे। हर शख्स खुदा ही का मुहताज और महकूम होगा, बस अगर खुदा के औलाद हो तो खुदा ही की तरह वजूद व लवाजिम वजूद के साथ मौसूफ होना चाहिए। अब ये जरा मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अगर खुदा की औलाद होती, ठीक है ना, ये एक मंतकी, एक फलसफियाना तरीके से हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह गोया के शिर्क का जवाब दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर खुदा की कोई औलाद होती तो वजूब वजूद, यानी जिसको कहते हैं ना वाजिबुल वजूद का मतलब ये होता है कि उसका वजूद जो है वो वाजिब है। क्या मतलब? कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसका वजूद जो है वो खत्म हो जाए, उसको मौत आ जाए, ठीक है। तो अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, कोई भी मखलूक वाजिबुल वजूद नहीं है कि हर वक्त उसका वजूद रहे। तो भाई अगर अल्लाह की नाउज बिल्ला औलाद होती तो वो भी वाजिबुल वजूद होती, क्योंकि औलाद तो अपने वालदैन की जिन्स में से होती है, अपने वालदैन की सिफात उसी के अंदर होती है, औलाद के अंदर, ठीक है। तो अल्लाह ताला की औलाद अगर होती तो वो भी वाजिबुल वजूद होती, और लवाजिम वजूद यानी उसका वाजिब होना लाजिम होता, ठीक है, उसके अंदर भी ये वाजिब होनी चाहिए थी अगर अल्लाह की औलाद होती, ठीक है। और खुदा की ये सिफात हैं जो मजकूर हुई, उमूम कुदरत उमूम इल्म, ठीक है, यानी उसके अंदर भी ये वाली सिफात होनी चाहिए कि उसकी कुदरत भी आम हो, हर चीज को मुहित हो उसकी कुदरत, और उमूम इल्म यानी उसका इल्म भी ऐसा होना चाहिए जो कि हर चीज को कवर करता हो, हर चीज उसके इल्म के अंदर हो। और गैर खुदा की ये सिफतें हैं इफ्तिकार व इनकियाद, यानी जो खुदा का गैर है उसकी क्या सिफतें हैं? इफ्तिकार। इफ्तिकार का लफ्ज निकला फकर से, फकर, ठीक है, यानी जिसको फकीरी कहते हैं, जिस यानी कुछ नहीं है अपने पास, ठीक है, उसको फकीरी कहते हैं। तो इफ्तिकार और इनकियाद, इनकियाद का मतलब, इनकियाद का लफ्ज कैद से निकला, कैद, कैद का मतलब क्या कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी लिमिटेशंस हैं, वो हर काम नहीं कर सकता, वो हर जगह नहीं जा सकता, वो हर चीज को नहीं जान सकता, ठीक है ना, हर चीज को नहीं सुन सकता, हर चीज को नहीं देख सकता, یہ ساری قیدیں ہیں. تو خدا کے جو غیر ہیں وہ مقید ہیں, وہ ریسٹرکٹڈ ہیں, وہ لمیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کے اندر فقر بھی ہے, یعنی ان کے اپنے ملکیت میں کچھ ہے ہی نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ان کی ملکیت میں ہے, جو اللہ نے نہیں دیا ان کی ملکیت میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو غیر خدا کی صفات ہیں, اور یہ ساری کی ساری ضد ہیں وجوب کے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے واجب الوجوب, تو انقیاد اور افتقار یہ تو اس کی ضد ہے, اپوزٹ ہے. پھر ضدین کا اجتماع کیوں کرو سکتا ہے, ٹھیک ہے بھائی, جب دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں تو پھر اولاد کیسے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تب یہ ایک منطقی انداز ہے بات کو سمجھانے کا, جس کی کہ ہمارے لیے کوئی خاص ریلیونس ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بس علمی بحث کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور بس یہ بہت ریلیونس کی بات ہے. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے, اللہ تعالیٰ ان کو علاوہ نعم مذکورہ اخرویہ کے دنیا میں یہ نعمت دے گا. یعنی جو آخرت کی نعمتیں مذکور ہیں نا, جن کا ذکر کیا جاتا ہے آخرت کی نعمتوں کا, تو وہ تو ان کو دے گا ہی, لیکن دنیا کے اندر یہ نعمت دے گا کہ ان کے لیے خلائق کے دل میں محبت پیدا کر دے گا, ٹھیک ہے, مخلوق کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. سو آپ ان کو یہ بشارت دے دیجئے, کیونکہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں اس لیے آسان کیا ہے کہ آپ اس سے متقیوں کو خوشخبری سنا دیں, اور نیز اس سے جھگڑالو آدمیوں کو خوف دلا دیں. اور ان خوف کی چیزوں میں سے نقمت دنیاویہ کا ایک یہ بھی مضمون ہے کہ یعنی پکڑ, نقمت کا ترجمہ پکڑ سے کرتے ہیں, دنیاوی پکڑ کا ایک یہ بھی مضمون ہے کہ ہم نے ان کے قبل بہت سے گروہوں کو عذاب و قہر سے ہلاک کر دیا ہے, ٹھیک ہے. یعنی دنیا میں ان کی پکڑ آ گئی, آخرت میں تو آنی تھی, لیکن دنیا میں بھی اجتماعی شکل میں ان کو ہلاک کر دیا. ورنہ تو کافر اجتماعی شکل میں ہلاک نہیں ہوتے نا بھائی, امریکہ کے کافر یا برطانیہ کے کافر, اور کیا کتنے کتنے ظلم کیے, کتنے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا. یہ جو جارج بش جس کا ابھی انتقال ہوا ہے, تو اس نے عراق کے اوپر حملہ کر کے نہ جانے کتنے بے گناہ مردوں, عورتوں, بچوں کا قاتل ہے نا. ہٹلر جو ہے وہ اس نے لاکھوں لوگوں کو دنیا میں قتل کیا, اور جو ہٹلر ویسے سب کو یاد رہتا ہے لیکن وہ بورے یاد نہیں رہتا, جو ونسٹن چرچل تھا اس کو تو سب جو ہے وہ نجات دہندہ سمجھتے ہیں نا, ونسٹن چرچل جو برطانیہ کا تھا, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ شاید ہٹلر سے بھی زیادہ بڑا ظالم اور قاہر تھا, لیکن انہوں نے اپنی فلموں کے ذریعے سے اس کو ہیرو بنا کر کے پیش کیا, تو ہم اس کو ہیرو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. بہرحال یہ سارے ونسٹن چرچل اور ہٹلر اور مسولینی اور سٹالن اور یہ آج 20ویں صدی کے جو ہیں, تو ان کے اوپر کون سا اجتماعی عذاب آیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے روس کو تباہ تو نہیں کر دیا, اللہ تعالیٰ نے برطانیہ کو اور امریکہ کو تباہ تو نہیں کر دیا. تو یہ جو نقمت دنیاوی ہے نا, دنیاویہ ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی شکل میں پوری قوم ہلاک کر دینا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انفرادی طور پر کافر کے اوپر عذاب نہیں آیا. ہر کافر کے اوپر عذاب آتا ہے, دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے. تو ہم نے ان کے قبل بہت سے گروہوں کو عذاب و قہر سے ہلاک کر دیا ہے. تو کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں؟ یہ کنایہ ہے بے نام و نشان ہونے سے. سو کفار اس نقمت دنیاویہ کے بھی مستحق ہیں, وہ کسی مصلحت سے کسی کافر کے لیے اس کا وقوع نہ ہو مگر اندیشے کے قابل تو ہے. یعنی یہ جو حل تو حصو منہم من احد او تسمع لهم رکزا کا ترجمہ کیا بنایا کہ کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کو آواز سنتے ہیں. یعنی یہ بالکل بے نام و نشان ہو گئے, ان کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ گیا. اب یہ قبروں میں جانے کے بعد جو ہے نا, وہ دنیا میں کسی قسم کے عمل کا اختیار نہیں رکھتے. پہلے سمجھتے تھے کہ جی ہم دنیا میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن بالکل ہی آؤٹ آف دا پکچر ہو گیا, آؤٹ آف مائنڈ, آؤٹ آف سائٹ. کوئی سوال ہے اگر تو پوچھ لیجیے, معرف و مسائل بننا دیکھے اگلی کلاس میں اس مکمل ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ابھی فیصلہ تو نہیں کیا ہے کون سی سورت کے بعد شروع کریں گے, نیکسٹ کلاس میں پوچھتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. کوئی چیز پوچھنے کی ہے؟ افتقار کے معنی, جی جی بتایا نا کہ یہ یہ فقر اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ فقرا, ٹھیک ہے, تو افتقار مطلب فقر کی انتہا. کون سا یہ بنے گا باب, افتقرا یفتقر افتقارا اجتنب یجتنب اجتنابا, باب افتعال سے. انقیاد جو ہے وہ وہ بھی اسی باب سے ہے, قید قیدا ینقید ینقید قیدا ینقید یقید. ٹھیک ہے, کلاس ختم کرتے ہیں, تفصیل کے بعد پھر کلاس کے بعد. الحمدللہ, السلام علیکم.